का था, रूह वही रूप नया।
शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के पिछले भाग में आपने सुना कि विक्रम के खान को अगवा कर लिया गया और उससे पेंटिंग लौटाने की मांग की गई। कौन थे वो लोग जिन्होंने विक्रम खान को अगवा किया था? क्या शियाली और सार्जेंट सलीम का रहस्य खुल पाया? क्या वाकई उन दोनों की शादी हो गई? सुनिए शोलागढ़ एट 34 किलोमीटर के इस भाग में। सार्जेंट सलीम दोबारा उसी पत्थर पर बैठ गया। वो चिंता में पड़ गया था। वो शियाली के बारे में सोचने लगा। शियाली जिंदा थी और शहर में सारा ड्रामा उसी को लेकर मचा हुआ था। टीवी चैनल रोग आ रहे थे, खुफिया विभाग जान लड़ाई दे रहा था। इसी शियाली के चक्कर में वो यहां जंगलियों में आ फंसा। न जाने जंगली क्या करेंगे उसका। ये सोचते सोचते उसके दिमाग की धारा बहक गई। ठीक है, निजात मिली रोज की भाग दौड़ और खुफियागिरी से। शियाली से शादी करके इसी जंगल में बस जाऊंगा। शियाली खूबसूरत भी है, जंगल की रानी भी। मैं खुद राजा रहूंगा, खाना और घूमना।
लेकिन इनके चावल का स्वाद बहुत बुरा है,
सार्जेंट सलीम बुदबुदाया। जब मैं राजा हो जाऊंगा तब रोटी पकवाया करूंगा। अचानक उसे श्रेया का ख्याल हो आया। वो अब तक उसे कहीं नजर नहीं आई थी। आज रात वो उसे तलाशेगा, उसने फैसला किया। इसके साथ ही वो वहां उठ खड़ा हुआ। जब सलीम वापस जंगलियों की बस्ती के करीब पहुंचा तो वहां अजब गुलगपाड़ा मचा हुआ था। सारे जंगली घेरा बनाए बैठे थे। एक मंच पर शियाली बड़े आराम से बैठी घेरे की तरफ देख रही थी। बीच बीच में जंगली शोर मचा रहे थे। सलीम नजदीक पहुंचा तो देखा कि दो मुर्गों की लड़ाई चल रही है। दोनों ही मुर्गे एक दूसरे पर जबरदस्त हमला कर रहे थे। गोल घेरे में मुर्गों के पंख बिखरे पड़े थे, खून की बूंदें भी गिरी हुई थीं। यानी लड़ाई देर से जारी थी। दोनों ही असील नस्ल के मुर्गे थे। असील नस्ल भारत में अरब से आई है। दरअसल ये नस्ल कबायली है। इन मुर्गों को लड़वाने का शौक भी कबीलों से होते हुए सभ्य समाज तक पहुंचा है। बाद में ये शौक नवाबों के दौर में खूब फला फूला। फैजाबाद के नवाब शुजाउद्दौला के दौर में ये काफी परवान चढ़ा। आसफुद्दौला को भी मुर्गों की लड़ाई का शौक था। असील मुर्ग की सबसे ज्यादा नस्लें हैदराबाद में पाई जाती हैं। असील नस्ल के मुर्गे पैदाइशी लड़ाका होते हैं, इन्हें लड़ाई की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, इन्हें हिंसक और जुझारू बनाने के लिए बड़े जतन किए जाते हैं। बायसन का पत्ता खिलाया जाता है, कुछ लोग स्टेरॉइड भी देते हैं। असील मुर्गे जरा लंबोतरे होते हैं, इनकी गर्दन भी दूसरे नस्ल के मुर्गों से लंबी होती है। लड़ते वक्त वो गर्दन को तीर की तरह सीधा तान लेते हैं। गर्दन के बाल खड़े करके ये सामने वाले मुर्गे को चेतावनी देते हैं। असील मुर्गे की टांगें काफी लंबी और मजबूत होती हैं। इनकी कलगी बहुत छोटी होती है। एक एक मुर्ग 10-10 हजार रुपए तक में बिक जाते हैं। सार्जेंट सलीम भी चुपचाप आकर सबसे पीछे खड़ा हो गया। उसकी निगाहें हर चेहरे को बड़े ध्यान से देख रही थीं। वो उनमें श्रेया को तलाश रहा था। उसने खामोशी के साथ पूरे घेरे का एक चक्कर लगा लिया, हर चेहरे को बड़े गौर से देखा। उसे श्रेया कहीं नजर नहीं आई। उसे अंदाजा था कि इस वक्त सारे जंगली यहां मौजूद हैं। उसकी इस हरकत को शियाली बड़े ध्यान से देख रही थी, लेकिन इस बात का अंदाजा सलीम को बिल्कुल भी नहीं हुआ। सार्जेंट सलीम एक जगह खड़े होकर मुर्गों की लड़ाई देखने लगा। दोनों मुर्गे एक दूसरे पर कभी पंजे से वार करते तो कभी चोंच से। जब मुर्गे लड़ते लड़ते थक जाते तो एक दूसरे से गर्दन जोड़कर खड़े हो जाते थे। ऐसा होते ही जंगली उन्हें फिर से पकड़कर एक दूसरे के सामने कर देते। मुर्गों की ये लड़ाई काफी देर तक चलती रही। आखिरकार एक मुर्गा बुरी तरह जख्मी होने के बाद मैदान छोड़कर भाग निकला। भगोड़े मुर्गे के पीछे कई जंगली भागे और उसे पकड़ लिया। सलीम चौंक पड़ा। दो जंगली महिलाएं उसके अगल बगल आकर खड़ी हो गई थीं। उसे इसका एहसास तब हुआ जब वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे झील की तरफ लेकर चल दी। वहां ले जाकर सलीम को नहलाया जाने लगा। आज उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया था। उसने अभी तक भागने की कोशिश नहीं की थी। उसे श्रेया को तलाश करना था। जब सलीम नहा कर लौटा तो उसने पाया कि शियाली भी नहा चुकी थी। उसने अपने गीले बाल खोल रखे थे। उसने सलीम की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। सलीम को यूं लगा जैसे चारों तरफ साज बजने लगे हों। सलीम के आते ही नाच गाना शुरू हो गया। एक दिन पहले तक सलीम सर की चोट, थकान और बदहवासी की वजह से कुछ भी समझ नहीं सका था। आज वो डांस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा था। वो मर्दों के बीच नाच रहा था और शियाली औरतों के बीच। सार्जेंट सलीम मुंह में उंगली डालकर अजीब सी आवाज भी निकाल रहा था। वो पूरा जंगली लग रहा था। धीरे धीरे रात घिरने लगी। जंगलियों ने मशालें जला ली थी। कुछ देर बाद सभी को खाना परोसा जाने लगा। साजन सलीम के आगे भी एक बड़ा सा पत्ता बिछा दिया गया। उसके ठीक सामने शियाली बैठी थी। वो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। साजन सलीम के आगे भी वही बेजायका वाला चावल और भुना हुआ गोश्त परोस दिया गया। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने चावल के स्वाद को इग्नोर किया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद सभी अपनी अपनी कुटिया में चले गए। साजन सलीम जो कि अब शहजादा सलीम था, उसे दो जंगली औरतें उसकी कुटिया तक छोड़कर चली आईं। सलीम ने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगा। उसने तय किया था कि आधी रात के बाद उठकर वो श्रेया को तलाशेगा, इसीलिए अभी सो जाना चाहता था। कुछ देर बाद ही उसके खर्राटे गूंजने लगे। अभी चांद ने आसमान पर आधे से कुछ ज्यादा सफर ही तय किया था कि सलीम की आंख खुल गई। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी झोपड़ी से जैसे ही बाहर कदम रखा कि तुरंत ही उसे पैर अंदर खींच लेने पड़े। दो पहरेदार उसकी झोपड़ी के सामने तैनात थे, यानी उसे छुट्टा नहीं छोड़ा गया था। वो लौट आया और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर यूं ही पड़ा रहा। उसके बाद उठकर सेंठे और फूस से बनी दीवार को धीरे धीरे तोड़ने लगा। जल्द ही उसने एक बड़ा सा सुराख बना लिया और आसानी से बाहर आ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। अंदाजा लगाया कि आधी रात से कुछ ज्यादा ही गुजर चुकी है। तभी उसने कुछ दूरी पर एक साई को जाते देखा। इधर इंस्पेक्टर कुमार सोहराब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सार्जेंट मुजतबा सलीम को गायब हुए 2 दिन गुजर चुके थे। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सलीम और श्रेया दोनों के ही मोबाइल सर्वेलांस पे लगे हुए थे। उनके गायब होने के बाद से मोबाइल दोबारा ऑन नहीं हुए थे। मोबाइल की आखिरी लोकेशन भी हीरा नदी के पास की ही मिली थी। नदी से काफी दूर तक पुलिस की 5 टीमें सलीम और श्रेया को तलाशने गई थी। इसके बावजूद दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। दोनों को तलाशने की कोशिशें अब भी जारी थी। सोहराब इस वक्त गुलमोहर विला में मौजूद था। उसने दाहिने हाथ के अंगूठे और बीच वाली उंगली पर अपनी ठोड़ी टिका रखी थी। तर्जनी उंगली होठों पर थी। वो उंगली को कुछ इस तरह होठों पर रखता था जैसे चुप रहने को कह रहा हो। सिगार एश्रे पर रखी हुई थी। उसका धुआं उड़ उड़कर हवा में घुलता जा रहा था। सोहराब ने काफी देर से कोई कश नहीं लिया था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। कई सारे सवाल थे जिनके जवाब उसके पास नहीं थे, ना ही घटनाओं की कड़ियां ही जोड़ पा रही थीं। कई सारे किरदार थे, हर किरदार जुदा था। कुछ घटना में फिट थे तो कई का रोल ही समझ में नहीं आ रहा था। अब सार्जेंट सलीम और श्रेया लापता थे। सलीम के ना होने से उसे कोई मदद भी नहीं मिल पा रही थी। दूसरे अब उसे भी तलाश करना था। इन सबके बीच सोहराब एक बात को लेकर मुतमईन था कि सलीम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अगर उसे मारना होता तो वही काम तमाम कर दिया गया होता। मुजरिम उसे स्टीमर पर लाद कर ले जाने की मशक्कत कभी नहीं करते। सलीम को ले क्यों जाया गया, यह सोहराब के लिए बड़ी गुत्थी बन गई थी। अभी तक वो इसका जवाब भी नहीं खोज पाया था। उसने सिगार को एश्रे से उठा लिया और बाहर लॉन में आ गया। सूरज डूब रहा था। जाती हुई किरणें गुलमोहर विला को चूम रही थीं। सोहराब ने जूते उतार दिए और हरी घास पर नंगे पैर टहलने लगा। वो सिगार के हल्के हल्के कश अब भी ले रहा था। तभी लॉन के पास आकर एक लंबी सी कार रुकी। उसमें से कैप्टन किशन उतर रहा था। वो कार से उतरकर सीधे सोहराब की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। उसके पीछे शैलेश जी अलंकार था।
आइए अंदर ही चलते हैं,
सोहराब ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। वो दोनों को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। दोनों को बैठाने के बाद सोहराब भी उनके सामने सोफे पर बैठ गया। ड्राइंग रूम काफी बड़ा था, यहां एक वक्त में 25 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे।
जी कैसे जहमत की,
सोहराब ने नर्म लहजे में पूछा।
मैं यहां ये पता करने आया था कि शेयाली के बारे में कुछ पता चला क्या,
कैप्टन किशन ने पूछा।
अभी तक तो कुछ खास पता नहीं चला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं,
सोहराब ने कहा।
सोहराब साहब, मैंने आपकी काफी तारीफ सुनी है, कुछ सुराग तो हाथ लगे होंगे,
कैप्टन किशन ने सोहराब की आंखों में देखते हुए कहा। लेकिन सोहराब की आंखों की ताब न लाकर वो दूसरी तरफ देखने लगा।
हम कोशिश में लगे हैं, जल्दी ही सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा,
इंस्पेक्टर सोहराब का लहजा अब भी नर्म था।
मैंने सुना है कि आपके सार्जेंट सलीम फिल्म इंडस्ट्री की एक लड़की के साथ फरार है,
कैप्टन किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसका लहजा चढ़ाने वाला था।
आपने गलत सुना है कैप्टन किशन, वो एक मुहिम पर है,
इंस्पेक्टर सोहराब ने पूरी गंभीरता से जवाब दिया।
भाई ये तो आप जाने, हमें आपके मामलात से क्या लेना देना, हमने जो सुना था आपको बता दिया,
कैप्टन किशन का लहजा इस बार गंभीर था। कुछ पल की खामोशी के बाद सोहराब ने पूछा,
आपकी फिल्म कहां तक पहुंची?
कुछ खास नहीं, शेयाली के जाने के बाद तकरीबन सब कुछ ठप ही पड़ा है,
कैप्टन किशन ने गमगीन आवाज में कहा। अपनी बात पूरे करते ही कैप्टन किशन उठ गया। वो नौजवानों से फुर्ती के साथ उठा था, उसके साथ ही शैलेश जी अलंकार भी उठ गया।
शैलेश अजीब सी रूखी तबीयत का आदमी था, ना ही आते वक्त और ना ही जाते वक्त ही उसने सोहराब को विश किया था।
इंस्पेक्टर सोहराब दोनों को ड्राइंग रूम के दरवाजे तक छोड़ने गया। जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि जहां शैलेश अलंकार बैठा हुआ था वहां फोल्ड किया हुआ कागज का एक पेज पड़ा हुआ था। सोहराब ने कागज का वो पेज उठा लिया, उसने उसे खोल कर देखा, उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ते ही सोहराब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कागज के टुकड़े को कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया।
सार्जेंट सलीम एक निश्चित दूरी बनाकर उस साये का पीछा करने लगा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो पेड़ की छांव में ही रहे ताकि चांदनी की रोशनी उस पर ना पड़े। सलीम ने गौर किया कि वो साया भी कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद एक साया और पेड़ों की ओट से निकलकर उसके साथ चलने लगा, यानी ये दो लोग थे। काफी दूर तक सार्जेंट सलीम और उस साये के बीच लुका छुपी का खेल काफी देर तक चलता रहा। आखिर एक जगह पर कुछ पल के लिए दोनों साये चांदनी में आ गए। सलीम ने गौर किया कि उनमें एक पुरुष और एक महिला है। महिला के हाथों में कुछ सामान था। सार्जेंट सलीम उन दोनों साये का पीछा करते हुए काफी दूर निकल आया था। कुछ आगे जाने के बाद छोटी छोटी पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। उन दोनों जंगलियों का रुख उन्हीं पहाड़ियों की तरफ था। कुछ दूर जाने के बाद दोनों ने एक पहाड़ी के पास के पेड़ से बंधे एक मोटे से रस्से को खींचा। सार्जेंट सलीम ने देखा कि उनके ऐसा करते ही पहाड़ी के एक मुहाने से बड़ा सा पत्थर हट गया। इसके बाद उन दोनों ने रस्से को पेड़ से कसकर बांध दिया। पुरुष रस्से के पास ही खड़ा रहा। महिला ने जमीन पर रखे सामान को हाथों में फिर से उठा लिया और सधे कदमों के साथ पहाड़ी की तरफ चल दी। सार्जेंट सलीम भी छिपते छिपाते पहाड़ी के उस मुहाने के पास जाकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। उसे अंदाजा हो गया था कि ये एक गुफा है। इस गुफा के मुंह को एक पत्थर से बंद कर दिया गया था। जंगली औरत उस गुफा के अंदर चली गई। सार्जेंट सलीम काफी देर तक उसका इंतजार करता रहा। जब वो बाहर नहीं निकली तो सलीम को उलझन होने लगी। वो जमीन पर लेट गया और पत्थरों की ओट लेता हुआ गुफा की तरफ चल दिया। वो इसी तरह से गुफा के अंदर दाखिल हो गया। अंदर गहरा अंधेरा था, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। सलीम उठकर खड़ा हो गया। वो बहुत सधे हुए कदमों से चल रहा था। रास्ता बहुत खराब था। अचानक उसे एक जोर की ठोकर लगी और काफी संभलने के बावजूद वो जमीन पर ही आ रहा। उसने पूरी कोशिश की थी कि उसके गिरने की आवाज पैदा ना हो पाए। तभी उसने अपनी तरफ आते कदमों की आहट सुनी। उसने लेटे ही लेटे तेजी से करवट बदली और दीवार से जा चिपका। कोई तेजी से उसके पास से गुजर गया। उसकी चाल से उसे मालूम हुआ कि उसे इस गुफा के ऊबड़ खाबड़ रास्तों के बारे में पूरी तरह से अंदाजा है। सलीम दोबारा खड़ा हो गया और आंख फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा। अचानक जैसे उसे कुछ याद हो आया हो, वो तेजी से गुफा के दरवाजे की तरफ भागा। एक बार फिर वो एक पत्थर की ठोकर खाकर जमीन पर आ रहा। उसकी रफ्तार तेज थी, इस वजह से इस बार उसे काफी चोट आई थी। वो चोट की परवाह किए बिना फिर उठा और तेजी से गुफा के दरवाजे की तरफ भागा। उसने देर कर दी थी। उसे अपनी बेवकूफी पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता था। वो कुछ पल वहीं खड़ा सोचता रहा। दरअसल गुफा के सामने फिर से वही पत्थर लगाया जा चुका था। उसने पत्थर को हटाने की जोर आजमाइश शुरू की। पत्थर ज्यादा भारी नहीं था। सलीम ने इसका अंदाजा उन दोनों जंगलियों के पत्थर हटाने से लगा लिया था। उसने पूरा जी जान लगा दिया। पत्थर टस से मस ना हुआ। उसे समझते देर न लगी कि पत्थर किसी खांचे में फिट होता है, ऐसा खांचा जिसमें पत्थर को ऊपर तो उठाया जा सकता है लेकिन सामने से धक्का देकर हटाया नहीं जा सकता। उसने पत्थर को नीचे से ऊपर ले जाने की कोशिश की। मुश्किल ये थी कि नीचे उंगलियां ले जाने के लिए जगह नहीं बन पा रही थी। काफी कोशिश के बाद भी जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो वो नाउम्मीद होकर वहीं बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट तक वो आंखें बंद किए बैठा रहा और लंबी लंबी सांसें लेता रहा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी और वो उठकर खड़ा हो गया। उसका रुख गुफा के अंदर की तरफ था। सर्जन सलीम ने आंखों की पुतलियों को पूरी तरह फैला लिया। ये अंधेरे में देखने की एक तकनीक है। अब उसे गहरे अंधेरे में भी जगहों का एहसास हो रहा था। वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ने लगा। गुफा के काफी अंदर जाने के बाद उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो सतर्क हो गया। सलीम दीवार से चिपक कर धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंधेरे में किसी के बैठे होने का एहसास हुआ। सलीम दम साधे खड़ा रहा। वो बैठी हुई चीज के बारे में अंदाजा लगाने लगा। सर्जेंट सलीम ने अचानक उस बैठे हुए जीव पर छलांग लगा दी और उसे दबोच लिया। अचानक ही पूरी गुफा एक लड़की की चीख से गूंज उठी। सलीम हड़बड़ाकर उससे दूर हट गया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, लड़की की घुटी घुटी सी आवाज सलीम के कानों में गूंज कर रह गई। श्रेया, श्रेया, सलीम ने फुसफुसाती सी आवाज में कहा। उसने आवाज को पहचान लिया था। तुम कौन हो? कौन हो तुम? मैं सर्जेंट सलीम। तुम्हें यहां क्यों बंद किया गया है? श्रेया की सिसकियों की आवाज सलीम के कानों को विचलित कर गई। वो रो रही थी। जिंदगी बचने की आस ने शायद उसे खुशी से भर दिया था। सलीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया को कैसे ढांढस बंधाए। वो कुछ दूर खड़ा पलकें झपकाता रहा। अचानक श्रेया उठी और उससे लिपट गई। अब उसका रोना तेज हो गया था। श्रेया के इस तरह आकर लिपट जाने से सलीम घबरा गया था। वो कई कदमों पीछे हटा था। नतीजे में वो फिर नीचे था। इस बार श्रेया उसके ऊपर गिरी थी। सलीम के मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। सलीम के इस तरह से गिर जाने से श्रेया की हंसी फूट पड़ी। सलीम ने जल्दी से उसे खुद से अलग किया और उठकर बैठ गया। बड़े जासूस बने फिरते हो, एक लड़की का वजन नहीं संभाल सकते। लड़की का वजन संभालने की ट्रेनिंग हमें नहीं दी गई थी। अगर यहां से जिंदा बचा तो यह ट्रेनिंग भी शुरू कराने के लिए महकमे को मेल कर दूंगा। सलीम ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। अगर श्रेया ने उसका मुंह देखा होता तो यकीनन वो और ज्यादा हंस रही होती। तुम यहां क्या कर रही हो?
वो हरामजादे मुझे मार डालना चाहते हैं। जिंदगी बख्शने के बाद लाकर यहां बंद कर दिया है।
पूरी बात बताओ। सलीम के इस सवाल के जवाब में श्रेया ने जो वारदात बयान की उसका लब्बो लुआब ये था कि सलीम के सर पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया गया था। उसके बाद श्रेया को भी बांध दिया गया। वो 5 लोग थे। उन्होंने जंगलियों जैसी पोशाक पहन रखी थी। उन्होंने अपने चेहरों पर अलग अलग जानवरों के मास्क लगा रखे थे। उसके बाद सलीम और श्रेया को एक कार से नदी किनारे तक ले जाया गया। वहां ले जाने के बाद श्रेया की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें एक मोटर बोट पर लाद दिया गया। जंगल पहुंचने के बाद श्रेया की आंखों पर से पट्टी हटा दी गई। उन जंगलियों ने श्रेया को एक महिला और 2 पुरुषों के सुपुर्द कर दिया। वो तीनों उसे काफी दूर पहाड़ी पर ले जाकर भाले से मार देना चाहते थे। श्रेया ने काफी मिन्नतें की तो साथ आई महिला मान गई। उसके बाद तीनों में काफी देर खुसुर फुसुर होती रही। कुछ देर बाद तीनों ने श्रेया को इस गुफा में लाकर बंद कर दिया। वही महिला रोज रात को श्रेया के लिए खाना लाती है। आज भी वो खाना देने ही आई थी। सलीम ने श्रेया की इस बात से अंदाजा लगाया कि बाकी जंगलियों की नजर में श्रेया मारी जा चुकी है। तीनों ने किसी वजह से श्रेया को यहाँ छुपा दिया था, किसी को पता न चले। इस वजह से उसे रात के अंधेरे में चुपचाप वो जंगली महिला खाना दे जाती है। तुमने भागने की कोशिश नहीं की? सलीम ने पूछा।
मुझे इस इलाके के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं कहाँ जाती? फिर उन्होंने मुझे छुपा कर रखा था। अगर मैं बाहर निकलती तो मारी जाती।
श्रेया ने कुछ देर की खामोशी के बाद सलीम से पूछा,
तुम कहाँ थे और अब तक क्यों नहीं भागे?
मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता था? सलीम ने कहा।
अच्छा जी,
श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा।
बिल्कुल जी,
सलीम ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। उसके बाद सलीम ने पूछा, तुमने खाना खा लिया?
जी,
श्रेया ने जवाब दिया। और उसके बाद उसने पूछा, अब क्या इरादा है?
सोच रहा हूं यहीं बस जाऊं। अच्छी जगह है,
रोज भुना हुआ बेहतरीन गोश्त खाने को मिलता है, घूमने के लिए जंगल और झील है।
अच्छा है तुम्हारे लिए, किसी जंगली औरत से शादी कर लेना, जिंदगी बड़े आराम से कटेगी,
श्रेया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा।
अच्छा मशविरा है।
कल जब वो जंगली औरत खाना देने आए तो मेरी शादी का रिश्ता देना उसे, सलीम ने पूरी गंभीरता से कहा।
मुझे नींद आ रही है,
श्रेया ने कहा।
मैं यहां बंद नहीं रह सकता, यहां से निकलने का उपाय करना है। ये नामुमकिन है, मैं दरवाजे का पत्थर हटाने की काफी कोशिश कर चुकी हूं। कल रात जब वो खाना देने आएगी तो निकल भागेंगे।
वो जंगली सुबह मुझे झोपड़ी में नहीं पाएंगे तो तलाश में जुट जाएंगे। उनकी तादाद ज्यादा है और हथियार भी हैं।
मेरे पास एक खाल के सिवा कुछ नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं।
इस वजह से इस वक्त उन जंगलियों से टकराव ठीक नहीं है, सलीम ने कहा।
क्या तुम उनके मेहमान हो?
बाद में बताऊंगा,
सलीम ने चारों तरफ देखते हुए कहा।
एक अजीब बात यह है कि गुफा में घुटन नहीं है,
फिर चौंकते हुए कहा।
इसका मतलब ये है कि कहीं से अंदर हवा आ रही है।
मुझे नहीं पता।
एक बात बताओ, ये गुफा अंदर और भी गहरी है क्या? तुमने दिन में तो देखा होगा ना?
हाँ, काफी गहरी गुफा है, लेकिन अंदर का हिस्सा काफी पतला है। वहां सिर्फ बैठकर ही जाया जा सकता है,
श्रेया ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद सलीम टटोल टटोल कर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाते ही रास्ता संकरा हो गया था। सलीम लेट गया और कोहनी के बल रेंग रेंग कर धीरे धीरे अंदर खिसकने लगा। थोड़ा अंदर जाने के बाद ढलान शुरू हो गई। अब उसके लिए सरकना आसान हो गया था। कुछ दूर और चलने के बाद उसके चेहरे पर ठंडी हवा का झोंका टकराया और सलीम जोर से चिल्लाया,
यूरेका यूरेका।
इंस्पेक्टर सुहराब को कागज का कौन सा टुकड़ा मिला था? क्या सार्जेंट सलीम गुफा से निकल सका? क्या हुआ विक्रम के खान के साथ? जानने के लिए सुनिए शोलागढ़ @34 किलोमीटर का अगला भाग सिर्फ गाथा पर।